योगात्मक। जैसा योगात्मक शब्द से स्पष्ट है, इस वर्ग की भाषाओं में प्रकृति प्रत्यय के योग से शब्दों की निष्पत्ति होती है। योगात्मक के तीन प्रमुख भेद हैं, पहला अश्लिष्ट योगात्मक, दूसरा श्लिष्ट योगात्मक, तीसरा प्रश्लिष्ट योगात्मक। अश्लिष्ट योगात्मक वर्ग की भाषाओं में अर्थ तत्व के साथ प्रत्यय या विभक्ति का योग होता है, किंतु वह योग बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जैसे हिंदी के इन शब्दों को लीजिए, घन त्व, मधुरता, जनता, तीखापन, बनावट। इन शब्दों में अर्थ तत्व के साथ प्रत्यय लगे हैं, किंतु उनका अस्तित्व अलग दिखाई दे रहा है। वे शब्द के साथ मिलकर भी अलग हैं और अलग रहकर भी मिले हैं। यही स्थिति अश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं की होती है। अश्लिष्ट का अर्थ है न धनश्लिष्ट, अर्थात जो चिपके नहीं। योगात्मक होने से उनमें योग यानी मेल है, मगर श्लिष्टता नहीं है, अर्थात वे अर्थ तत्व के साथ इतना नहीं चिपक गए हैं कि उनका पार्थक्य नहीं किया जा सके। अश्लिष्ट में प्रकृति एवं प्रत्यय का पार्थक्य स्पष्टतः दिखाई पड़ता रहता है। श्लिष्ट में रचना तत्व में जुड़ने पर अर्थ तत्व में कुछ परिवर्तन हो जाता है, फिर भी अर्थ तत्व और रचना तत्व का भेद सर्वथा लुप्त नहीं होता। उदाहरणार्थ नीति से नैतिक, मुनि से मौन, सुंदर से सौंदर्य, लवण से लावण्य आदि। इन शब्दों में रचना तत्व यानी प्रत्यय के कारण परिवर्तन तो हो गया है, पर मूल शब्द पहचान में आ जाता है। इसके प्रतिकूल प्रश्लिष्ट में अर्थ तत्व और रचना तत्व का मेल इस प्रकार होता है कि उनका अंतर करना सुकर नहीं होता, इसीलिए इसे प्रश्लिष्ट कहते हैं। अच्छी तरह श्लिष्ट, जैसे ऋतु से आर्तो, ऋजु से आर्जव आदि। पहला अश्लिष्ट योगात्मक। ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि अश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में अर्थ तत्व के साथ रचना तत्व का योग होता है, किंतु दोनों की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। इस वर्ग की प्रतिनिधि भाषा तुर्की है। तुर्की में शब्द के निष्पादक अवयवों का योग इतना स्पष्ट होता है कि मालूम होता है जैसे किसी ने शब्दों को सुडौल ढांचे में काट छांट कर बैठा दिया हो। निम्नलिखित उदाहरण लीजिए, एव यानी घर एक वचन, एव देन यानी घर से, एव इम यानी मेरा घर, एव इम देन मेरे घर से, एव लेर यानी घर बहुवचन, एव लेर देन यानी घरों से, एव लेर इम यानी मेरे घर से, एव लेर इम देन मेरे घरों से। एक दूसरा उदाहरण, सेव यानी प्यार, सेव एर प्यार करने वाला, सेव एर इम मैं प्यार करने वाला हूँ, अर्थात मैं प्यार करता हूँ, सेव दिर मेक प्यार करवाना, सेव इश मेक परस्पर प्यार करना, सेव इश दिर मेक परस्पर प्यार करवाना, सेव इन मेक अपने को प्यार करना, सेव मे मेक प्यार नहीं करना। अश्लिष्ट योगात्मक में रचना तत्व अर्थ तत्व के कहीं पूर्व में जुड़ता है, कहीं मध्य में, कहीं अंत में और कहीं पूर्वांत में। इस प्रकार स्थिति के अनुसार उसके चार भेद हो जाते हैं, पूर्व योग, मध्य योग, अंत योग और पूर्वांत योग। पूर्व योग, पूर्व योग के उदाहरण बंतु परिवार की काफिर और जुलू भाषाओं में मिलते हैं। काफिर भाषा में कु के लिए संप्रदान का चिन्ह ती यानी हम, नि यानी उन, अतः कुती यानी हमको या हमारे लिए, कुनी उनको या उनके लिए। जुलू भाषा में उमु एक वचन का चिन्ह, अब बहुवचन का चिन्ह, अंत मनुष्य। इनके मिलने से निम्नलिखित शब्द बने, उमुंतु एक मनुष्य, अबंतु बहुत मनुष्य। काफिर और जुलू के उपयुक्त शब्द प्रयोग के उदाहरण हैं, क्योंकि रचना तत्व अर्थ तत्व के पहले लगा है। अंग्रेजी में रचना तत्व इसी प्रकार आता है जैसे फॉर अस हमारे लिए, फॉर देम उनके लिए। मध्य योग, संथाली भाषा में मध्य योग के उदाहरण प्राय मिलते हैं, जैसे मंजी यानी मुखिया, प बहुवचन का चिन्ह, मन म पंज यानी मुखिए। इसी तरह दल यानी मारना, दपल एक दूसरे को मारना, इन दोनों शब्दों में बहुत्व का बोधक पंग और परस्परता का बोधक प बीच में आए हैं। अतः ये दोनों उदाहरण मध्य योग के माने जाएंगे। अंत योग, तुर्की के जो उदाहरण ऊपर दिए गए हैं वे अंत योग के ही हैं। भारत की द्रविड़ भाषाएं भी अंत योग का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। जैसे कन्नड़ में सेवक शब्द के विभिन्न कारकों में विभिन्न रूप होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, संबंध, अधिकरण। एक वचन सेवक नु, सेवक नन्नु, सेवक निंद, सेवक निगे, सेवक न, सेवक नल्ली। बहुवचन सेवक रू, सेवक रन्नु, सेवक रिंद, सेवक रिंगे, सेवक र, सेवक रल्ली। मलयालम में इसी प्रकार विभक्तियां अलग से अंत में लगती हैं। तुर्की या कन्नड़ के उपयुक्त उदाहरण अंत योग का स्वरूप सम्यक स्पष्ट करते हैं। पूर्वांत योग, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, इस वर्ग की भाषाओं में रचना तत्व शब्द के पूर्व भी लगता है और अंत में भी। पूर्वांत योग के उदाहरण न्यूगिनी की मीफोर भाषा में मिलते हैं, जैसे मनफ यानी सुनना, जनफ ऊ मैं सुनता हूँ तुझे, जहाँ मनफ के आदि और अंत दोनों और रचना तत्व का योग हुआ है। फ्रांसीसी में निषेध सूचक शब्द का प्रयोग इसी तरह निषेध के आदि और अंत में होता है। अश्लिष्ट योगात्मक के यही चार प्रमुख भेद हैं। दूसरा, श्लिष्ट योगात्मक। श्लिष्ट योगात्मक में वे भाषाएं आती हैं जिनमें रचना तत्व के योग से अर्थ तत्व वाले अंश में कुछ परिवर्तन हो जाता है, जैसे नीति, वेद, देह, देव, भूत, भूगोल आदि शब्दों से एक प्रत्यय करने पर क्रमशः नैतिक, वैदिक, दैहिक, दैविक, भौतिक, भौगोलिक आदि शब्द बनते हैं। यहाँ रचना तत्व एक के योग से अर्थ तत्व वाले अंश में परिवर्तन हो गया है, फिर भी अर्थ तत्व और रचना तत्व को पहचानने में कठिनाई नहीं होती। इसी प्रकार अरबी के निम्नलिखित उदाहरण शब्द हैं। अरबी में कतब का अर्थ है लिखना, इस कतब से अनेक शब्द बनते हैं। किताब, कुतुब किताब का बहुवचन, कुतबा यानी लेख, कातिब यानी लिखने वाला, मकतब वह स्थान जहाँ लिखना सिखाया जाए, मकातिब मकबत का बहुवचन, मकतूब यानी लिखित, मकतूबात मकतूबात का बहुवचन। एक मूल यानी कतब से निष्पन्न इन सभी शब्दों में परिवर्तन होने पर भी अंतर्वर्ती स्वरों का योग स्पष्ट होता है। इसी प्रकार कतल के से कत्ल यानी वध, कातिल से वध करने वाला शब्द बने, इल्म से आलिम, इश्क से आशिक और माशुक आदि शब्द भी श्रेष्ठ योगात्मक के ही उदाहरण हैं। भारत यूरोपीय तथा सामी परिवार की भाषाएं श्लिष्ट योगात्मक वर्ग में आती हैं। संस्कृत के अतिरिक्त ग्रीक, लातिन, अवेस्ता, रूसी आदि की भी रचना प्रणाली एक जैसी है। संस्कृत के ये उदाहरण लीजिए, बालक पठति, बालिका खेलति, बालकम पश्य, बालिकाम अकारय। इन वाक्यों में रचना तत्व का योग होने पर भी अर्थ तत्व स्पष्ट दिखाई पड़ता है। कुछ लोगों ने संस्कृत को बहिर्मुखी और अरबी को अंतर्मुखी कहा है, किंतु यह भेद मान्य नहीं है। ऊपर के नैतिक, वैदिक आदि उदाहरणों में अरबी के समान परिवर्तन शब्द के बीच में ही हुआ है। इसी प्रकार पठ, मृ आदि धातुओं के लिट लकार के, पपाठ, ममार आदि रूपों में अरबी के समान शब्द के भीतर ही परिवर्तन होता है, बाहर नहीं। श्लिष्ट योगात्मक वर्ग की भाषाएं क्रमशः योगात्मक से वियोगात्मक होती जा रही हैं। संस्कृत से हिंदी का या लातिन से फ्रांसीसी आदि का विकास इसका प्रमाण है। संस्कृत योगात्मक थी, हिंदी बहुत कुछ अयोगात्मक हो गई है क्योंकि उसकी विभक्तियां शब्दों के साथ नहीं लगती। यही बात फ्रांसीसी में भी दिखाई देती है। लातिन की योगात्मकता फ्रांसीसी तक आते आते खंडित हो जाती है और अंग्रेजी या हिंदी की तरह फ्रांसीसी भी प्राय अयोगात्मक हो गई। तीसरा, प्रश्लिष्ट योगात्मक। प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा वह है जिसमें अर्थ तत्व और रचना तत्व का ऐसा मिश्रण हो जाता है कि उनका पृथक्करण संभव नहीं होता। इस वर्ग की भाषाओं में अनेक अर्थ तत्वों का थोड़ा थोड़ा अंश काटकर एक शब्द बन जाता है। स्वभावतः वह शब्द केवल शब्द का अर्थ नहीं देता बल्कि पूरे वाक्य का अर्थ देता है। तो अश्लिष्ट योगात्मकता का अर्थ संस्कृत के निम्नलिखित क्रिया रूप से स्पष्ट हो जाएगा। जिगमिषति, वह जाना चाहता है। जिगमिषति, इस एक शब्द में ही वह जाना चाहना, वर्तमान काल, अन्य पुरुष, एक वचन, इतने अर्थ वर्तमान हैं। इस प्रकार जिगमिषति एक शब्द होते हुए भी पूरे वाक्य का काम करता है। इसी तरह पिपठिष्यामि का अर्थ होता है मैं पढ़ना चाहता हूँ, यह भी एक शब्द होकर पूरे वाक्य का अर्थ देता है। ठीक इसी तरह प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में अनेक अर्थ तो सिमट कर एक में मिल जाते हैं। एस्किमो या बास्क भाषाएं इस कोटि में आती हैं। एस्किमो का एक उदाहरण तुकसर यरतोर उम गुलुअर नरपे आ, क्या तुम सोचते हो कि वह वस्तु जिसकी देख रेख करने को जाना चाहता है। तुकसर यानी वह उसके साथ व्यस्त होता है, यरतोर वह जाता है, उम वह चाहता है, निर्प किंतु आ क्या तुम सोचते हो। एक एक अवयव से जितना अर्थ व्यक्त हो जाता है वह संक्षिप्त होकर एक अर्थ का वाचक हो जाता है। बास्क के निम्नलिखित उदाहरणों में भी प्रश्लिष्टता दिखती है। दर द कर की ओत यानी मैं उसे घर तक ले जाता हूँ, नकारसु यानी तू मुझे ले जाता है, हकार्थ यानी मैं तुझे ले जाता हूँ। संस्कृत के उपरिउद्धृत जिगमिष्यति के समान देखने में ये एक एक शब्द हैं किंतु काम ये वाक्य का कर रहे हैं। आकृति मूलक या रूपात्मक वर्गीकरण के यही चार भेद हैं। भाषा विज्ञानियों का अनुमान है कि भाषा के विकास का क्रम योगात्मकता से योगात्मकता की ओर और योगात्मकता और अयोगात्मकता की ओर अनवरत चलता रहता है। आज की अनेक अयोगात्मक भाषाओं का प्राचीन रूप योगात्मक था किंतु आज वे अयोगात्मक हो गई हैं। संस्कृत योगात्मक थी, हिंदी अयोगात्मक हो गई है, लातिन योगात्मक थी, उससे विकसित फ्रांसीसी, स्पेनी, पुर्तगाली आदि अयोगात्मक हो गई। संभव है कुछ दिनों में ये अयोगात्मक भाषाएं पुनः योगात्मक बन जाएं। कुछ दिनों पहले तक आकृति मूलक वर्गीकरण का बहुत महत्व था किंतु अब यह अनुभव किया जाने लगा है कि वर्गीकरण के इस आधार पर बहुत वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला, एक तो यह कि श्लिष्ट अथवा प्रश्लिष्ट में स्पष्ट विभाजक रेखा खींचना कठिन है। प्रत्येक भाषा में कुछ अंश ऐसा है जो इन तीनों वर्गों में समाविष्ट हो जाता है। संस्कृत को ही लीजिए, उपसर्गों या क्रिया विभक्तियों का अस्तित्व अर्थ तत्व से पृथक झलकता रहता है। जैसे प्रभवती प्रहरति में उपसर्ग प्र धातु भू एवं ह्रे और विभक्ति का रूप बिल्कुल स्पष्ट है। वैदिक नैतिक आदि श्लिष्ट के उदाहरण हैं और जिगमशित आदि प्रश्लिष्ट के, अतः आकृति मूलक भेद स्थूल दृष्टि से ही ग्राह्य हैं। सूक्ष्मता से विचार करने पर उनमें परस्पर सांकर्य आ जाता है जो मनोवैज्ञानिक का विरोधी है। दूसरा, संसार के समस्त भाषाओं का अब तक अध्ययन नहीं हो पाया है। संभव है उनका अध्ययन होने पर और भी आकृतिगत या रूपात्मक विशेषताओं का पता लगे। अभी अयोगात्मक भाषाओं की जितनी जानकारी है वह भी अपर्याप्त है। जिस गहराई से भारत यूरोपीय परिवार की भाषाओं का अध्ययन हुआ है उस गहराई से चीनी, बर्मी आदि का नहीं। अतः अयोगात्मक भाषाओं के संबंध में जो निष्कर्ष निकले हैं वे अखंडनीय हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसीलिए आकृति मूलक वर्गीकरण का अब वह महत्व नहीं रह गया जो पहले था। भाषा विज्ञानी अब आकृति मूलक वर्गीकरण से पारिवारिक वर्गीकरण को अधिक महत्वपूर्ण मानने लगे हैं।